ओम शांति। तो आज हम आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। अनुभव सुनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं ना, याद भी रह जाता है कि हम ज्ञान में आए तो बाबा ने क्या क्या अनुभव कराया। जिसको मैं कहती हूँ खुदा मुझ पर फिदा। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो क्या फिदा हुए, वास्तव में वो ही हमारे ऊपर फिदा है। मुझे ये फीलिंग आती है। तो मैं ज्ञान में कैसे आई, मुझे 55 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। मैं 66 में ज्ञान में चली, बाबा थे लेकिन बाबा से मैं मिल नहीं पाई। मैं अनुभव में सुनाऊंगी। बचपन से ही भगवान से बहुत प्यार था। मैं 4 साल की थी तो मैंने व्रत रखने शुरू किए थे, 4 साल की उम्र थी। ये बाबा कैसे मिले मुझे, तब मेरी उम्र 13-14 साल थी। पड़ोस में से एक माता जाया करती थी, कमला नगर सेंटर था। गुलजार दादी रहा करते थे, जगदीश भाई साहब थे, चक्करधारी दीदी उनके साथ रहती थी, गुलजार दादी के साथ। तो जो कहावत है ढाई अक्षर प्रेम के ओटे सो अर्जुन, मैं ढाई अक्षरों से ही चली। उस समय कोई कोर्स नहीं होता था, कोई ज्ञान की डिटेल नहीं थी, ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल हमें ये कहा कि तुम एक शुद्ध आत्मा हो, मूल वतन से आई हो और मूल वतन जाना। लेकिन बचपन से एक नेचर थी कि जो काम करना है तो करना है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो घर में मैंने कहना कुछ और है और मैं अपनी मम्मी को यही कह रही हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मूल वतन से आई हूँ, मूल वतन जाना है। तब तो वो हंसती। हम 2-4 बार चोरी छिपे गए, तब गुलजार दादी नहीं थी उस समय, लेकिन मैं 3री-4थी बार गई होंगी। तो मैंने फर्स्ट बार गुलजार दादी को देखा, तब चीन की और हिंदुस्तान का झगड़ा चल रहा था और हमारी तरफ कर्फ्यू लगता था और उनको पता था ये बांधेली हैं और चोरी चोरी आती हैं घर से। तो दादी ने मेरे से 1-2 प्रश्न पूछा, शिव बाबा कैसा है, क्या रंग है, क्या रूप है। बस दादी को देखते ही मैंने जीवन का फैसला किया था कि अगर इस दुनिया में जीना है तो ऐसा बन के ही जीना है, नहीं तो जीना ही नहीं। ऐसे करके 7 साल मैं चोरी आती रही। जब ऐसा हुआ तब हमने पांडव भवन ले लिया था। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया भी नहीं, इसलिए कि अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी तो जवाब दे देगी। और प्याल लहसुन तो खाते ही थे, तो कुछ दिन तो हमने मम्मी को चला दिया। जिस दिन देखे प्याल लहसुन की सब्जी बनी है, भूख लगी है करके अपनी रोटी बनाई खा ली। मम्मी ने इस बात को नोट किया कि जिस दिन प्याल लहसुन की सब्जी बनती है उस दिन ये बातें करती है। मेरी मम्मी ने खूब पिटाई की मेरे, खाती है नहीं खाती है, खा लिया नहीं लगा नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया, ये ठीक नहीं किया। मतलब इतना ज्यादा उस समय आत्मिक स्थिति का था कि ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाना मेरा, यही हो सकता था ना। मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। मैं सारा दिन रोती रही। जब मैं रात को सोई, मम्मा अव्यक्त हो चुकी थी, लेकिन मम्मा बाबा मेरे स्वप्न में आए और बाबा कहते हैं, बच्ची तू हार गई। मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी हार कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद हमने नहीं खाया। ऐसे हमने 7 साल बिताए। फिर खाली 8th की पढ़ाई बिठा दिया घर पे, कोई बात नहीं। ये था हमको कि हमें अपने पांव पे खड़ा होना है। तो मैंने डिप्लोमा किया, सिलाई, हाथ की एम्ब्रॉयडरी, मशीन की एम्ब्रॉयडरी, कि अपने पांव पे खड़ा होना। जब मैंने डिप्लोमा किया, मैं वैसे सिंधी परिवार से हूँ और सिंधी लोग जो हैं गुरुद्वारे को ही मानते हैं, तो मम्मी सुबह सुबह 2:30-3 बजे गुरुद्वारे जाया करती थी। तो शिव बाबा का जो किरणों वाला चित्र है वो मुझे किसी ने गुण लिख के दिए थे, तो फाइल का एक अच्छा सा केस था मेरे पास। और रात को मैंने लाल पीली पेंसिल रखी कि मैं शिव बाबा का चित्र बनाऊंगी। तो मैंने लगन क्या चीज होती है अब पता चलता है। तो पीली पेंसिल इधर उधर हो गई, मैंने हल्दी उठाई और हल्दी से कलर दिया और 5-6 दिन लग गए मुझे उसको लिखने में और ये करने में। मेरी कोई राइटिंग बहुत अच्छी ऐसा कुछ नहीं था। तब तक मुझे 7 साल हो चुके थे चोरी चोरी आते हुए। तो दिवाली का दिन था, मैंने भाई की निकर सिलाई की थी, वो निकर पता नहीं कहाँ रखी गई, मिले ही नहीं। तब ट्रंक हुआ करते थे, तो मेरा अलग से एक ट्रंक था छोटा सा। तो मम्मी ने सोचा हो सकता है गलती से यहाँ रख दिया हो। वो जैसे ट्रंक खोला तो ऊपर ऊपर वो चित्र रखा हुआ था। वो दिवाली तो क्या बनी, बहुत झगड़ा हुआ घर में। नहीं लगा, नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं। मैं सुबह उठी, अपना तैयार हुई और चल दी घर से। तो मम्मी कह रही है कहाँ जा रही है, मैंने कहा सेंटर जा रही हूँ। कुछ नहीं बोली वो, मैं चली गई। तब तक गुलजार दादे वहीं रहते थे, पर आते ही मैंने दादी को कहा दादी अब तो मैं मधुबन जाऊंगी। दादी मुस्करा दी, अभी तो घर जाएगी पता नहीं क्या होगा। और ये अभी से कह रही है मधुबन जाना है। मैं घर गई, मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उन्हें फाइनल हो गया कि हमारे हाथ से निकल गई, अब हमारे हाथ आने वाली नहीं है। और विशेष मैंने जगदीश भाई की बहुत पालना ली, क्योंकि टाइम बेटाइम जाती थी। तो दीदी दादी रेस्ट का उनका टाइम होता था, तो भाई साहब मुझे अटेंड करते थे। मैंने भाई साहब की जो नजर थी ना, वो एक बार व्यक्ति को देख ले ना, वो समझ जाते थे ये क्या है। एक बार दीदी को कहा होगा कि बेचारी इतनी भागती भागती आती है, कुछ सुना दो। तो दीदी ने कहा घर से अकेली आती है, छोटी सी उम्र है, ये चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी। तो भाई साहब ने कहा नहीं ये चलेगी। तो भाई साहब की नजर बहुत ही इस हिसाब से। अब मेरी उम्र भी थोड़ी हो चुकी थी, 21 साल मेरी उम्र हो गई थी, और लौकिक में तो फिर शादी ही चाहिए उनको, तो और कुछ काम ही नहीं होता। तो हमारे यहाँ हमारे ना मामा की बहुत चलते थे, तो मामा ने मेरे से पूछा, मैंने सुना है कि आप शादी नहीं करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया, उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की मुझे वो करने की। मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत है। कहते एक बात याद रखना, अगर तुम शादी नहीं करोगी हम नहीं खिलाएंगे, तुम खुद कमा के खाओगी। मैंने कहा वो तो मुझे मंजूर है, मैंने डिप्लोमा किया ही इसलिए था कि मुझे अपने पांव पे खड़ा होना है। वहां हम थोड़ा सा दूर रहते थे कमला नगर से, लेकिन हम नजदीक में आ गए घंटाघर में। वहां मेरे मामा वगैरह रहते थे, उन्होंने अपना मकान ले लिया, तो वहां से थोड़ा नजदीक, फिर भी आधे घंटे का रास्ता था वहां से। तो अब मैं रोज जाने लगी। अब मेरे से छोटी सिस्टर की उन्होंने मैरिज कर दी, मैं फ्री हो गई एक प्रकार से। अब आई मधुबन की बात। तब तक गुलजार दादी पांडव भवन ले लिया था दिल्ली वाला, तो गुलजार दादी पांडव भवन चली गई। वहां जब दादी चली गई, अब मधुबन की मेरी टिकट आई हुई है, मेरी सब तैयारी है, घर में नहीं बताया। घर में एक हफ्ता पहले मैंने कहा कि मुझे मधुबन जाना है, कहते वहां तो नहीं जाने देंगे। ठीक है, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया 2 दिन तक। तो ये तो है नहीं कि कोई माँ बाप का मोह नहीं होता, मोह तो होता ही है, और लोक लाज होती है, मेन तो यही होता है। तो मेरे को मौसी ने गोद लिया हुआ था, तो दोनों मम्मियां दीदी से लड़ने चल पड़ी। 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, कल को मर जाएगी तो क्या होगा ये वो। दीदी ने तो थोड़ा समझाया, और मैंने दीदी को भी नहीं बताया कि मैंने खाना नहीं खाया। एक बार जाती थी, अब 2 बार जाने लगे। तो तो दीदी ने कहा फिर तुम यही सुबह बना के खा के। मैंने एक हफ्ते तक मैंने घर में खाना नहीं खाया। मेरा मामा कहता है इसकी टांगे तोड़ दूंगा, इसका गला घोट दूंगा, इसको वहां नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा कुछ भी कर लो, वहां तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर आखिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा ये बताओ आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा हो? आज भी नहीं मांग रही, क्योंकि मैंने देखा कि चाहे मैं हम परिवार में गरीबी थी, ये हमारा हाथ कभी खाली नहीं रहा, हमारा हाथ हमेशा भरा हुआ रहा। तो मेरे पास सब कुछ था, टिकट आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। मैंने कहा आज भी नहीं मांग रही मैं आपसे कुछ भी, बस एक बार जाने दो, फिर कभी नहीं जाऊंगी। मैं 73 में आई हूं, कितना मधुबन था, ये हाल था। बाबा का छोटा सा कमरा था, बाबा के कमरे में आए थे इसी गद्दी पर, थोड़े से लोग थे। तो उस समय ऐसा नहीं जैसे लास्ट में ओपन में दादियां खिला, उस समय ऐसा नहीं था। वाणी हो गई, सब चले गए बाहर, तो कोई कोई विशेष होते थे जो बाबा को खिलाते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा को अपने हाथ से खिलाऊं, मुझे किसी ने नहीं जाने दिया। तो बड़ी दीदी को पता चला, मैंने बड़ी दीदी की बहुत पालना ली। दीदी को पता चला कि इसकी इच्छा थी और इसको किसी ने आने नहीं दिया। तो प्यार में सिंधी में मुट्ठी कहते हैं, कहते हैं मुट्ठी कोई नहीं, तो आज मेरे साथ खाना खाना। मैं पहली बार मधुबन में आई हूं, मैंने दादी के साथ खाना खाया, दीदी के साथ खाना खाया। और मैं बाबा से जब मिली, बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, और मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा सुबह तो मैं आती हूँ, जब फिर सेवा करने के लिए दोबारा, तो मैंने शुरू से सेवा का बहुत रहा मेरे अंदर, तो मम्मी फिर छिटपिट करना शुरू कर देती है। तो बाबा ने मुझे दो शब्द कहे, बच्ची सेवा करनी है कैसी भी हो। जब मैं मधुबन से वापिस आई, कमला नगर हमारा सेकेंड फ्लोर पर था, तो दो बूढ़ी माताएं सेवा करती थी, सफाई वफाई करती थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। सुबह में 4 बजे सेंटर पहुंचती थी अकेली। अब सोचती मैंने इसका मैं 3:30 निकलती होंगी ना, तब तो मैं आधा घंटा चल के जाती थी। आज मुझे कहे तो शायद न जाऊं, मैंने इतना जोश था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मतलब पूरे सेंटर की मैं सफाइयां करती थी, तब क्लास 5:30 चलते थे, इंदिरा गांधी के बाद फिर लेट कर दिया गया था। तो क्लास करती थी, फिर घर आती थी, खाना उठाती थी। 7 साल फिर मैंने सर्विस की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में। शुरू से मेरा शरीर थोड़ा वीक था, मेरी तबीयत खराब रहती थी। अब मैं दीदी भाई साहब को कहूं मुझे रख लो, कहीं कैसे रख लें। इस बीच में बाबा भी अव्यक्त हो गए, तबीयत ठीक रहती नहीं, घर से कोई चलता नहीं, कल को शरीर न चला तो जीवन का फैसला, एक दिन की तो बात नहीं है। तो दीदी ने कहा अच्छा तुम बाबा से बात कर लेना। मतलब मेरे जीवन के इतने अनुभव मैं कई घंटों तक सुना सकती हूँ। बिल्कुल सीधे शब्दों में मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं सेंटर पे नहीं रह सकती। दीदी मेरे साथ थी, चक्रधारी दीदी। तो बाबा ने 3 बार दीदी को कहा बच्ची का ध्यान रखना, बच्ची का ध्यान रखना, बच्ची का ध्यान रखना। मतलब मुझे वो सीन ऐसे लगा था जैसे माँ बाप शादी करते ना, ससुराल वालों को कहते हैं इसका ध्यान रखना। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब से मैं सेंटर पे रहना शुरू किया 79 से। सेंटर पे रहने के बाद भी 10 साल के बाद मैं बहुत बीमार हुई। मतलब मुझे 41 साल हो गए सेंटर में रहते, मैं एक रात कभी नहीं गई घर में, लोगों के घर में कभी नहीं गई। बस मरने वाला कुछ होता है तो हम चले जाते हैं, नहीं तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं समझ लो उनसे। वही मेरा मामा कहता है तू 15 दिन घर आ जा। मैंने कहा 15 दिन? आप मुझे एक दिन भी नहीं खिला सकते आप। तो बाबा ने इतना, और मैं तो अभी भी समझती हूँ वरदानों से पल रहे। मैंने कहा ना, बड़ी दीदी के साथ मेरा बहुत रहा। जब मैं मधुबन आती थी और दीदी के सामने मैं 20-25 दिन दो बार रही भी, दीदी सुबह जैसे उठते थे शांति स्तंभ पे होते थे तो मैं शांति स्तंभ पे, दीदी बाबा के कमरे में तो मैं बाबा के कमरे में, दीदी सुबह का योग खुद कराते थे 4 बजे का। हाल में तो मैं दीदी के साथ साथ होती थी। यहां तक कि 74 में जब जानकी दादी विदेश गई हैं, यही कमरा था इधर जानकी दादी का, तो दीदी के साथ मैं थी, दादी को थोड़ा वो करने गई थी दीदी। तो सुबह योग करके आए, फिर दीदी बाहर खड़े होके दृष्टि देते थे कमरे के बाहर खड़े होके, फिर हम अपना तैयार होके फिर गुड मॉर्निंग करने जाते थे। तो एक बार मैं दीदी से जब गुड मॉर्निंग करने के लिए गई तो दीदी के, अभी भी शायद फोटो लगी हो, तो दीदी के गेट के ऊपर ना पगड़ी वाला बाबा का फोटो लगा हुआ था। तो दीदी बाबा कहती है, बाबा इस बच्ची को ना बहुत शौक है सेवा का, इसको बहुत सेवा देना, इसको बहुत सेवा देना। तो इस हिसाब से हुआ। फिर मैं अभी रहने लगी थी तो वहां पे एक दिल्ली में एक जहांगीरपुरी एरिया है, वहां पे झुग्गी झोपड़ी वालों को 25-25 गज दी गई थी जगह। वैसे तो लगभग लोग बेच के चले ही गए। तो वहां मैं 11 साल तक क्लास कराने जाती थी, 11 साल तक। तो वहां पे हमें किसी ने मकान दे दिया 25 गज का। फिर दीदी भाई साहब ने मुझे मुजफ्फरनगर भेजा, मैं 10 साल मुजफ्फरनगर लगा के आई। मुजफ्फरनगर गई, छोटा सा सेंटर था, 165 गज में सेंटर, क्योंकि मुजफ्फरनगर वाले बैठे हुए हैं कहीं, तो बस नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड था, बस एक बहन उसमें सोती थी, जो एक दो बहन रहती थी वो हॉल में सोती थी। हॉल था तो छत बह रही थी उसकी। दीदी तब रशिया गई थी, चक्रधारी दीदी रशिया गई हुई थी। तो मैंने भाई साहब को, मैंने वहां थोड़े लोगों से बात की तो ऊपर बनवा लें। मैं राखी करके यहां से गई थी और जन्माष्टमी जाके मैंने वहां की थी अगस्त में। तो मैं भाई साहब को कहा कि भाई साहब ऊपर बनवाएं, तो मुझे नहीं मालूम था तब तक सारा पैसा शक्तिनगर से लगा था वहां पे, और शक्तिनगर के हमारे त्यागी जी थे, उन्होंने वहां जाके बनवाया था सेट। तो भाई साहब ने कहा, बहन हमने बहुत पैसा लगा लिया, अब हम नहीं लगा सकते वहां। तो मैंने कहा क्यों, यहां से क्यों लगेगा, कि मैंने भाई बहनों से बात कर ली थी। भाई साहब कहते अगर वो कहते हैं खर्च करते हैं तो बनवा लो। तो वो वहां पे मैं अगस्त में गई हूं, अक्टूबर में वहां चिनाई शुरू हो गई थी, बना लिया ऊपर, बना लिए रहने का, ऊपर बन गया सब कुछ। मैं 92 में गई हूं, 93 में ये काम हुआ, 94 में हमने मेला किया वहां पे, 94 में मेला किया, माने बाबा ने हर प्रकार का अनुभव करा। माने मैंने आज तक जो भी संकल्प किया ना, बाबा ने न पूरा किया आज तक नहीं हुआ, खाली संकल्प करने की देरी है। हाँ लेट हो सकता है लेकिन ना हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, मेला किया, संख्या बढ़ गई और मैं जाते ही 25 गांव में सेवाएं की थी, जाते ही, क्योंकि मुजफ्फरनगर में तो गांव इतने हैं कि बात ही मत पूछो, 1100 गांव हैं वहां पे। पूरी लिस्ट मंगवाई थी मैंने मुजफ्फरनगर की। तो अब संख्या बढ़ गई, सेंटर छोटा हो गया। तो 94 में ही हम बहनों को 2 महीने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था अलग अलग जगह पे। जब मैं कहीं जहां गई, मैं बाजार गई तो चद्दर का कपड़ा देखा, बहुत अच्छा, फाइन, बड़े अर्ज का, तब तक मैंने इस टाइप का कपड़ा नहीं देखा था। न मेरे पास जमीन है, न मेरे पास पैसा है, कुछ नहीं है, एक संकल्प है, एक बड़ा हाल बनाऊंगी, खाली संकल्प है बस। मैं वहां से चद्दर का कपड़ा खरीद के आई हूं कि हाल बनाऊंगी, तो चद्दर बिछाऊंगी, है कुछ नहीं मेरे पास। वहां से हम वापस आ गए थे चौराहे में, बिल्कुल लगा हुआ 265 गज का प्लॉट पड़ा था किसी का, उसको खरीदा, शाने में उसको बनाया और वो चादर बिछी। और एक संकल्प था मुझे शुरू से, थोड़ा हरियाली से शौक है वैसे, उस छत पे मैंने पार्क बनाया था, छत पे पार्क बनाया, हर सब्जी मैंने उसमें उगा के देखी, वो तो छोड़िए कमल तक भी उगाया मैंने उसमें। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कोई कोई है अभी, थोड़े से वो गमले जो पिल्लर्स में बनाए थे वो है अभी। हाँ जी, तो वहां पे ये हुआ, हो गया सेट हो गया, फिर कोई कारण होना, इस बीच में भाई साहब हमारे चले गए 201 में, भाई साहब ने शरीर छोड़ा कोई कारण से, फिर मुझे वहां से दीदी ने बुला दिया, मैं आ गई। वहां से मैं आ गई और मुझे ये था कि मैं बना लूंगी, कहीं भी हो जाऊंगी। तो वहां से फिर अभी जहां संत नगर में हूं मैं, वहां से 10 किलोमीटर है शक्ति नगर, उससे वहां पे एक छोटा सा कमरा ले गए, नए सिरे से सेवा शुरू की, नए सिरे से बिल्कुल। थोड़े दिन के बाद दीदी क्लास कराने आई, कहती है कहां आ गए तुमने, जगह ढूंढी है। फिर मैंने दीदी को कहा, दीदी अब यहां आप जगह ले लो। तो पहले दीदी ने कहा अच्छा 50 गज ले लेते हैं। मैंने कहा मैं रोज आऊं जाऊं फिर तो ठीक है। तो दीदी जहां अभी बना हुआ है पहले वाला, तो दीदी ने नींव रखने आई थी, पैसे भी दीदी ने वहीं दे दिए, 120 गज में है वो। अब जब वो बना और हमको रहना था, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा थोड़े से लोग आते हैं, अभी तो उन्हें नॉलेज भी नहीं है कुछ इतनी, और मैं रहूंगी तो खर्च तो हो गई ना, सब कुछ तो चाहिए। मैं दीदी को कहूं आप मुझे यहाँ का खर्च दो, मेरे बस का नहीं है, ये मेरे से मत कराना आप, नहीं कराया। उसका जब उद्घाटन हुआ था 10,000 मेरे हाथ में आए थे। हाँ, दीदी ने हमें 6 महीने का राशन पानी सब डाल के दिया था, एक ही फ्लोर बनाया था। तो कुछ दिन भाई बहनों को भी नहीं पता था, तो कुछ लोग थे तो मैंने पूछा आप लोगों को पता है यहाँ का खर्च कैसे चल रहा है, कहते हो तो दीदी भेजती है। देखा क्यों भाई, दीदी ने इतना बना के दे दिया, वही उनका वो है सेवा, आप लोग ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुझे यज्ञ से बहुत प्यार आया शुरू से। अभी मैं समझती हूँ 5-7-10 दिन ही हुए होंगे, मेरे अंदर खाना ही न जाए, क्योंकि वो आदत थी यज्ञ में भेजने की, मैं यज्ञ का खा रही हूँ, यज्ञ में न जाए ये कैसे हो सकता है। मैंने दीदी को फोन किया, दीदी कहती अभी तो शुरू ही हुआ है। मैंने कहा चाहे इतना भेजूंगी यज्ञ में जरूर जाएगा। तो वहां वो शुरुआत हुई, मतलब धीरे धीरे लोग आने लगे। देखो कोई भी स्थान नया बनता है, एकदम नया, कोई भी नहीं था वहां पे, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, भर गया। अब नीचे हाल छोटा हो गया, अब जब नीचे हाल छोटा हो गया तो फिर हमने ऊपर हाल बनाया। नीचे हाल था, बाबा का कमरा है, कोर्स रूम है और थोड़ा सी जगह है, तो फिर ऊपर बनाया। जो ऊपर बनाया पूरे में हाल है वो, तो लगा बस अब नहीं, अब हो गया, अब बहुत हो गया। कुछ सालों के बाद वो भी छोटा हो गया। हाँ, छोटा पर गया वो भी। जब छोटा पर गया तो अपने एक भाई हैं, श्री कृष्ण भाई, ब्लाइंड है अभी, वो नीचे तलहटी में रहते हैं, उसका अपना फ्लैट है और यज्ञ में खाते पीते हैं। शुरू से वो मेरे साथ सेवाओं में रहे, उनको भी सेवा का शौक रहा शुरू से ही, तो मेरे साथ आते थे वो। मतलब अभी इतना बहनों में वो नहीं है, हम लोगों को बाबा के यज्ञ का खर्च करना बहुत, मतलब हमारे जगदीश भाई साहब में भी ये था, बहुत ज्यादा था। कभी भी कोई चीज को वेस्ट माने टूटे फूटे भी, मैं आपको कई अनुभव भाई के साथ, भाई साहब के साथ सुनाऊं, वो भी हमें फेंकने नहीं देते थे, काम आएगा। अपना ये सोनीपत है, अभी बना नहीं है, लेकिन आईसीयू में थे भाई साहब, आईसीयू में रहते हुए भाइयों को समर्पित करवाया यज्ञ की जमीन, क्योंकि गांव वालों ने इक्वायर कर ली थी, उनसे शुरुआई गई, यानी उनको यज्ञ से बहुत था, ये जमीन ऐसे चली जाएगी कैसे होगा, और उसमें सब सेवा केंद्रों को फोन कर दिए, आईसीयू में थे उस समय, कोई चीज नहीं खरीदी गई उस सेंटर के लिए, हर सेंटर में फालतू सामान होता है, वो सब लोगों ने भेज दिया, अभी तक भी उनके पास थोड़ा बहुत बाद में लिया होगा इन्होंने, लेकिन उसी से चला, इस हिसाब से। अब जब वो छोटा हो गया, तो नजदीक की बात है, 5-7 साल, अभी 4-5 साल की बात है, तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी कि अगर कोई जमीन लेके दे दे वे बना तो हम लेंगे धीरे धीरे। तो अपने श्री कृष्ण भाई, मैंने कहा ना मेरे साथ वो सेवाओं में रहे, तो वो रिटायर होने वाले थे, प्रिंसिपल स्कूल में थे, तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि दीदी मैं अभी रिटायर होने वाला हूं, तो मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा ना, तो मैं जमीन लेके दूंगा। उसने रिटायरमेंट के पैसे से ही हमें 450 गज जमीन खरीद के दिया, जिसको अभी हमने बनाया है। देखो, कोई भी बाबा का शुरू से हमने यज्ञ में देखा, कोई भी कार्य हुआ विघ्न आते हैं, लेकिन टल जाते हैं, और वो भी बाबा का एक, मैं तो ये सोचती हूँ कि बाबा बिगर योग करवाए हुए कोई कार्य नहीं करने देता, कि सहज ही हो जाए, आप कुछ मेहनत न करो, ऐसे नहीं होगा। वैसे हमारी वहां क्लास चलती थी पहले से ही, और लेकिन ये छोटा हो गया था, वो खेत की जमीन है, तो हमारे पास 14 माताएं रोज वहां से पैदल आती थी, दीदी हम बहुत दूर से आते हैं, तो एक दिन मैं गई, मैं तो पैदल नहीं गई, मैं तो गाड़ी में गई, तो देखा सचमुच ही दूर है, और फिर जब जमीन की जरूरत पड़ी तो हमने कहा देखते हैं, वहीं देख लेते हैं, तो वहीं हमने वो जमीन खरीदी है। ये बहुत विघ्न आए उसमें, एक तो उनका पूरा बटा हुआ नहीं था, और त्यागी लोग वहां पे, संत नगर की जमीन भी उन त्यागियों की है, बुराड़ी गांव वालों की, एक एक जगह कई कई लोगों को बेची उन्होंने, हाँ कई स्थान ऐसे पड़े हुए हैं जो कोई बना ही नहीं सकता, वहां तो इंच के लिए भी झगड़ा करते हैं वो लोग। सेंटर के पीछे एक किसी से बात कर रहा था, कहता है आपको पता है मैं त्यागी हूं, यानी झगड़ालू, बड़ी मुश्किल से वो जगह उनसे हमने ली, बड़ी मुश्किल से। फिर आजकल आपको पता है, एक तो खेत की जमीन है, चाहे तो कॉलोनी कटी हुई है, बनी हुई है, एसडीएम पुलिस वाले पैसा चाहिए, पैसा तो हम नहीं दे सकते। अभी शुरू ही किया था, क्या है कि वो जमुना पास में ही है, वहां पे तो नीचे रेत है, तो हमने नीचे तह में भी लैंटर डाला, बहुत गहरा, सभी को लगेगा, लग रहा था कि नीचे भी बनाएंगे, बेसमेंट बनाएंगे, भाई नहीं बनाना हमको बेसमेंट, हम तो वैसे ही वो करना है, तो काम रुक गया। गई मैं थाने में बात करने के लिए, मैंने कहा भैया सेवा केंद्र बना रहे हैं, कोई हम घर नहीं बना रहे, कोठी नहीं बना रहे, लोगों पब्लिक के लिए तो बना रहे हैं हम, कोई इसी हिसाब से हम थोड़ी बना रहे हैं। जैसे तैसे करके नजदीक में दिवाली वो आ रही थी, राखी वाखी बांधी, उनको छोटी मोटी गिफ्ट विफ्ट दी, उससे वो हुआ। तो उसके बाद फिर एसडीएम और ये अभी नया आया था, फिर काम नहीं, अभी थोड़ा बनाया ही था, अभी नेवी डाली थी तो तोड़ने आ गए, वहां का एक नियम है, कसूर उनका भी नहीं है, उनको भी गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि हमने तोड़ दिया और इन्होंने बना लिया, फिर हम क्या करें, और वो पैसा ले लेते हैं। और अब तो पहले देखो फ्लैट का अलग कोई होते थे गवर्नमेंट की तरफ से, डीडीए वो फ्लैट बनाती थी, कोई फ्लैट नहीं बना सकता था। अब तो दिल्ली में सारे मकान तोड़ तोड़ के फ्लैट, क्योंकि इतनी महंगी हो गई जमीन। हमने संत नगर की खाली 7.5 लाख में जमीन खरीदी थी 120 गज, और अभी थोड़ा रेट कम हुआ है, और हमारे वहां 1 लाख रुपए गज, इतना महंगा हो गया। तो जब उन्होंने वो किया तो भाई हम तो घबरा गए, हमको तो लगा यज्ञ का नुकसान हो जाएगा। ज्यादा उन्होंने बिचारों ने नहीं तोड़ा हमारा, थोड़ा ही तोड़ा था, नहीं हमें नहीं मालूम था कि तोड़ने से पक्का हो जाएगा, हमने सोचा है ये बनाए फिर कहीं हो जाए। ये बाबा अपना कार्य कैसे कराता है, जब ने नीचे वो किया तो बाबा किसी को भी निमित्त बना देता है ना। तो हमने कहा हम तो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो एक भाई आते थे हमारे पास, दूसरे भाई आते नहीं थे, उसने जाके भाई को कहा कि भैया दीदी ये कह रही है कि हम नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि दीदी को कहो कि आप काम जारी रखो, मैं दूंगा। बाबा ने किसी को भी निमित्त बना दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर एसडीएम आया नया और काम बंद करवा दिया। इतने चक्कर लगाए मैंने एसडीएम ऑफिस में जाके, पहले तो बात ही नहीं करता था, टोली ले जाओ कुछ, वो टोली तक भी नहीं लेने की इच्छा रखता था। एक दिन उसके हाथ में आ गई टोली, खाई उसने, जब मैं दोबारा गई कहता उस दिन मैंने भी प्रसाद खाया था, बड़ा अच्छा लगा और बना के भी बढ़िया लेके गई थी, खोए की थी। पर जब उसने ये कहा ना ये अच्छा लगा, तो मैं जब भी जाऊं चाहे वो मिले न मिले वापस कर देता था कि आज मेरे पास टाइम है, आज नहीं मिलूंगा। नहीं हमने भी उसका पीछा छोड़ा नहीं, और फिर तब भी राखी उसको बांधी, कुछ कुछ गिफ्ट दी। ये 30 लोग थे, 30 की 30 को ही बांधी हमने वहां, पूरे ऑफिस वालों के लिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना खुद आगे नहीं आते हैं, औरों को आगे वो कर, भैया घर थोड़ी बना रहे हैं, कोठी थोड़ी बना रहे हैं, पब्लिक के लिए तो बना रहे हैं ना, ये हमारे पास पैसा थोड़ी है, हम तो पैसा नहीं दे सकते हैं। जब देखा कि कोई बस नहीं चला हमारे आगे उनका, और मैंने भी पक्का सोचा था चाहे इस जमीन को बेचना भी पड़ गया ना बेच दूंगे, लेकिन रिश्वत का एक पैसा भी नहीं दूंगे, चाहे कुछ लाखों रुपया चाहिए हमें, और क्यों देंगे यज्ञ का। और फिर आप देखो सची मुची मेरे मन में आता है, बिचारी माताएं आती हैं, कैसे कैसे वो बचाती है, कैसे कैसे यज्ञ में करती हैं, और वो हम उनको रिश्वत दे दें, नहीं बनेगा कोई बात नहीं ना बने। फिर आखिर उसके दिमाग में आया, जब देखा ना, तभी मेरी तबीयत खराब थी लेकिन मुझे जाना पड़ता था, और देखता था कोई हाथ पकड़ के ला रहा है बहन जी को लेकिन उन लोगों को तो नहीं होता ना इतना, तो ठीक है। फिर उसने हमारा सहयोगी बनना शुरू किया, उसने सहयोगी बनना, फिर कहा कि देखो अभी आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जब बनने लगा तो कई प्लॉट कट गए, कई जमीन कट गई, और उनको एक बात तो नहीं होता है, अब प्रॉपर्टी डीलरों ने तरीका सीख लिया, वो पहले ही उनके पैसा दे आते हैं और कच्चा पक्का बनवा लेते हैं, और वो तोड़ जाते हैं उनका, उनके लिखत में आ जाता है हमने तोड़ दिया और उन्होंने बना दिया, माने पक्का हो गया समझ लो। तो कहा देखो मैं बिल्कुल लगा हुआ आपका तोड़ने आऊंगा और आपका काम चल रहा है तो ठीक नहीं रहेगा ना। मैंने कहा ठीक है आप जैसे कहोगे ना वैसे करेंगे, हमने थोड़े दिन रोक लिया। फिर खेती कटती है तो उन दिनों में प्रदूषण होता है तो बंद हो जाता है, काम बंद करवा देते हैं, तो उसमें हमें उसने सहयोग दिया, कहते आप अंदर ही अंदर काम करवा लो, मेरा नाम नहीं लेना आप, और आप बंद करके अपना काम करवा लो। तो ऐसे करके मतलब अब लॉकडाउन हुआ इसके कारण भी थोड़ा वो हुआ, 4 साल लग गए उस मकान बनाने में, अब जाके वो तैयार हुआ है। तो मतलब मैंने कहा ना, मेरे जीवन के बहुत अनुभव है। इसके बाद नहीं, इससे पहले की बीच की बात है, मेरे दोनों घुटने बेकार हो गए। मैंने कहा ना, मेरा शरीर हमेशा ऐसा रहा। डॉक्टर कहता है, दीदी ये दोनों घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, मतलब मैं उठ ही नहीं सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे सेवा से शौक रहा है, मैं खड़ी हो गई अलमारियों को पकड़ पकड़ के कमरे में से, खड़ी हो गई, टाइम पे वही मेरा उठने का टाइम, वही नहाने का, और मैं किचन में कुछ ना करूं ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैं बहुत बीमार हुई एक बार, अपने डॉक्टर गुप्ता हैं, एमडी गुप्ता जिसका मोहित बेटा है, उन्होंने मुझे पहले उन्होंने कहा एम्स में दिखाओ, वहां में उस समय किरण बहन जो थी वो कहीं बिजी थी, नहीं वो कर पाई, मैं किसी और में सारे चेकअप करवाए। तो उन्होंने कहा भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई बात नहीं। तब शायद गुलजार दादी ने मेरे से पूछा, कोई संकल्प तो नहीं चलता आपका? मैंने कहा नहीं, मुझे रियली नहीं चलता है। मैं कहूं ना, मैं कितना बाबा का थैंक्स करूं, हम उसका एहसान नहीं उतार सकते, कभी नहीं उतार सकते। चाहे मेरी इतनी तबीयत खराब रही है, ले बाबा ने सेवाएं बहुत करवाई। लास्ट मुजफ्फरनगर का मैं जेल का अनुभव सुनाती हूँ। 3 साल मैं जेल में ज्ञान सुनाने जाते थे मुजफ्फरनगर में, वो एरिया ही बेकार है, रोज या परन मर्डर होते हैं। किसी का 20 साल से झगड़ा था, 21 मर्डर हो चुके थे, एक भाई अंदर था, दूसरा भाई उसका फरार था बाहर, और दूसरे पार्टी के साथ 24 घंटे पुलिस रहती थी। तो मैं कहती थी, भैया आखिर तो फैसला है ना, क्या करोगे। उनके घर कुर्की हो चुके थे, पत्नियां पियरों में पड़ी थी, खेती करने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल रोड पे थे वो लोग। जब उसको 1 साल हो गया सुनते हुए, कहता है, दीदी अब हमारे केस खत्म हो जाएंगे और हमें सजा हो जाएगी। मैंने कहा, आपका जो भाई फरार है वो कहाँ रहता है? कह दीदी, खतौली में मेरे जीजा जी हैं, उनको मालूम है, हमने थोड़ी मेहनत की लेकिन सफल हुए हम। तो मैं खतौली गई, उसके जीजा जी से मिली। तो अब वो एक फरार व्यक्ति को वो बहन से मिला दे, नहीं मिला सकता ना, वो आनाकानी करने लगे। तो मैंने कहा, भाई साहब कोई बात नहीं, आप मेरा फोन नंबर ले लो, 94 की बात है ये, हाँ मेरा फोन नंबर ले लो, तब तो वैसे ही फोन थे, फोन पे कहना उससे मेरे से बात करेगा। उसका फोन आता है और बड़ा हंस के बात करता है, दीदी बड़े बड़े नेता तो आज तक हमारा फैसला न करवा पाए, आप हमारा फैसला क्या करवाओगे। मैंने कहा, नहीं भैया मैं भी नहीं कराने वाली हूँ, नहीं कराने वाला वो है और ये फैसला होकर ही रहेगा, ऐसे ही जवाब दिया मैंने उसको। हम इनके गांव में गए, दूसरी पार्टी से मिले, कहते दीदी आप इनका ठेका ले लोगी? मैंने कहा हाँ। कहते नहीं, ये बहुत गंदे लोग हैं, अभी अभी फैसला हुआ, अभी अभी 2 मर्डर कर दिए, वहां तो ऐसे मारते हैं, मैं बताऊंगी जेल की मेरी बहुत अनुभव है। तो मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये बताओ आखिर कब तक? भाई तुम नौकरी से छूटे हो, पुलिस में ही था और पुलिस तुम्हारे साथ रहती है, आखिर कब तक? इधर हमने इनको भी टाइट किया, भाई हम बीच में आ रहे हैं, कल को तुम कुछ कर बैठोगे तो अच्छी बात नहीं होगी, फिर आखिर मनुष्य थकता तो है ना गलत काम करके भी, और जो फरार व्यक्ति रहेगा अच्छा काम करेगा। जेल में रहता था उस समय 30 रुपए चक्की से तो लाट साहब नहाता था वो, मैंने खूब डांटा उसको। उस समय का सुपरिटेंडेंट अब 1-2 साल से ज्ञान में चला, मैंने कनेक्शन नहीं छोड़ा उससे, उस समय का फोन में इनको भी करती हूँ, चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज्ञान में चल रहे हो ऐसा नहीं। तो हमें तो साफ साफ कह देते थे, बता भी देते थे बेचारे, कि दीदी कभी भी पैसे की जरूरत होती है किसी को बंदूक दे के किसी लाला के पास दे देते हैं, इतने पैसे दे दो नहीं तो मार देंगे। ऐसे ही है वो, सब ऐसे ही है लोग वो, तो वो दे देते हैं हमको। अब जमीन का झगड़ा है, हम बहनों को क्या नॉलेज देंगे? वो गंदा एरिया होने के कारण कई प्रधान विधान अंदर पड़े रहते हैं वहां। मैंने दो चार से बात की, वे बीच में बैठ के इनका फैसला करवा दो। उनको फोन आने लगे कि अगर इनका फैसला करवा दिया ना तो तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा कोई दुनिया की ताकत नहीं हो तुम्हें कुछ कर सके, हम बीच में। जिस दिन उनका फैसला हुआ आधे गांव ने खाना नहीं बनाया, इनका फैसला कैसे हो गया? और वो इतना अच्छा फैसला हुआ आज वो एक थाली में खाते। तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट का मेरे सामने ही ट्रांसफर हो गया था। आपको अचंभा लगेगा, मैंने कहा ना मुझे किचन में, आज भी मैं किचन में खूब काम करते। उस समय 1100 लोग थे जेल के अंदर। 1100 लोग के लिए मैं कड़ी चावल अपने हाथ से बना के ले गई थी और उनको खिलाया था 1100 लोगों को। मैंने कहा ना हमने कईयों का कराएगा, और बहुत बड़ा बदमाश था मैं। वहां देखती थी जो बड़े बड़े बदमाश है ना, जिनके कनेक्शन में कई सुधर सकते हैं, आ सकते हैं, मैं उनको पकड़ती थी। तो एक था उसमें से, और मैंने कहा तुम ना ज्ञान सुन लो। बैठा आकर के सुना थोड़ा सा। कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर गलत वो करके और मेरे को अंदर करवाया, मैं उसके बेटे को मारूंगा और इसको तरफाऊंगा। मैंने कहा तुम बिल्कुल नहीं मारोगे। सुपरिटेंडेंट जो थे वो कहते थे दीदी मैं अंदर जाता हूं तो चार पुलिस वालों को साथ लेके जाता हूं। मैं ऐसे घूमती थी रियली जैसे मैं घर में घूम रही, और मैं डांट देती थी सबको और वो मेरे से डरते थे। उनको ये लगता था दीदी के मुंह से कुछ निकल ना जाए हमारे लिए। तो मैंने कहा ना वो बड़ा बदमाश था, तो एक साल से वो खाना नहीं खा रहा था। बस लास्ट ही सुनाऊंगी। एक साल से खाना नहीं खा रहा था, मतलब फल वल खाता होगा, और उसको कड़ी चावल बहुत पसंद थे। मैंने कहा देख तेजपाल मैं कड़ी चावल लाऊंगी और तूने नहीं खाए फिर देखना। दो दिन पहले उसने खाना शुरू कर दिया कि मैं एकदम खाऊंगा कहीं हजम ना हो। तो उसके घर वालों को जब पता चला कि दीदी की वो इतनी मानता है, कहते है दीदी हम पहले ही आपसे वो कहते हैं, लेकिन इनकी बदमाशी खत्म थोड़ी होती है। मैंने दीदी के हाथ से उसको चांदी की शिबाबा की अंगूठी बनवाई थी। दीदी भी एक दो बार गई थी चक्रधाय दीदी, तो ऐसे करके। और लेकिन नहीं, फिर ये कुछ नहीं करते तो हेरा फेरी कुछ तो करते ही है ना। फिर और बाहर निकल के आया तो जिस दिन भी मैं कड़ी चावल इसको बुलाती तो खा जाता था, क्लास में भी कभी कभी आ जाता था। लेकिन फिर किसने मार दिया उसको, अब इनके काम खत्म तो नहीं होते। तो इसी हिसाब से इनको चाहिए लोगों को प्यार। शुरुआत जो हमने की थी राखी से, राखी बांधने हम जाते थे और वो गंदा एरिया होने के कारण जो SDM वगैरह वहां आते हैं परेशान तो रहते ही हैं। मैं गई थी परेशान था, तो मैंने कहा भाई साहब हम ना आपकी हेल्प कर सकते हैं। कहते है, कैसे? मैंने कहा अगर आप परमिशन दे दो तो हम जेल में ज्ञान सुनाना शुरू करें। तो कहते आप क्या सुनाओगे, हमें थोड़ा लिखत में दे दो। हमने दे दी। कहते है बहन जी आप मत जाना। मैंने कहा क्यों, मेरे दुश्मन है, मैं ना जाऊं? हाँ छोटी बहनों को हम कभी नहीं ले गए, होते तो गंदे ही है ना लोग। भाई हमारी तो फिर भी मेरी उस समय 45 साल के करीब उम्र थी मेरी उस समय। तो इसी हिसाब से मतलब जेल की वहां सेवाएं हुई। और हमने एक अभी भी एक बदमाश है, उनका भी फैसला हमने करवाया था। दोनों पार्टियां थी, वो आता था बैठता था लेकिन चला जाता था। लेकिन उसने राखी नहीं बंधवाई। मैंने कहता मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा। हम उनसे कोई कोई प्रॉमिस करवाते थे कहता है मेरी माँ बाप को बहुत बुरे तरीके से मारा गया था और वो बदमाश बना ही किसी लिए, किसी की भलाई से बदमाश बना। एक परिवार था और वो तंग करते थे, उसके उसमें वो बना। तो कहता है कि नहीं, मुझे तो बदला चुकाना ही है। 100 बीघे उसकी जमीन है, आज भी वो जेल में है। बेटा बड़ा हो गया, एक भाई उसका वही हमारे वहीं आता है, तो कहता है कि वही हमारे रिश्तेदारी में ही है। तो कहता है कि ठीक है। मैंने कहा नहीं, तुम अब नहीं करोगे, अब किसी को नहीं मारोगे, तुम मार लिए जितने लोगों को मार लिया। वो एक दिन आके बैठ गया चुपचाप सुनने लगा। फिर दूसरी पार्टी दोनों को मैंने कोर्स कराया, पहले उसको भेजती थी, फिर दूसरे को बुलाती थी, उनका कोर्स कराती थी, उनका भी हमने फैसला करवाया था। नहीं, जो 10 नंबरी में आ जाते हो तो फिर उनका खत्म नहीं होता ना। नहीं, बेचारा मुझे कहता था दीदी मैं नहीं करना चाहता, उसकी आंखें भर आती थी बेचारे। मैं उसके गांव में भी गई थी, उसके घर में भी गई थी, मैं कई बदमाशों के घर में गई, कईयों के घर गई। कहता है लेकिन ये नेता लोग है ना, ये हमें छोड़ते नहीं, वही करवाते, वो नहीं छोड़ते। तो ऐसे ऐसे बाबा का कार्य है होना। ठीक है, टाइम हो गया ना, ओम शायद हाँ जी 4-5 मिनट। चलो लास्ट, आप लोगों को तो मैं फिर कहना, जो मैं सुपरिटेंडेंट की बात कर रही थी उसके उनके ऊपर एक झूठा केस लग गया। उसका फोन आता है, मैंने 10-15 साल हो गए थे वो चला गया था, लेकिन फोन पे मेरा कनेक्शन रहा उनके साथ। तो कहता है दीदी बाबा तो आपकी मानता है ना, और ऐसे ऐसे मेरे ऊपर झूठा केस लगा, आप बाबा को कहो। ठीक है, 2-4 दिन के बाद वो अंदर हो गया, उसकी पत्नी का फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे आज वो अंदर हो गए। अब कौन व्यक्ति क्या है मुझे क्या पता। तो मैं अमृत वेले जैसे उठी योग में, मैंने कहा बाबा अगर उस व्यक्ति का दोष है फिर तो उसे सजा मिलनी चाहिए, वही दोष है तो मिलनी चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं मिलने चाहिए। मैं सुबह क्लास करा के उठी, फोन आता दीदी मैं आ गया। उसकी पत्नी कहती है दीदी कोई चारा नहीं था, ये किया तो बाबा ने किया, कोई चारा नहीं था। मंगलवार का दिन था, कभी नहीं गए थे सेंटर, कोई ज्ञान में भी नहीं चल रहे थे, खाली मेरे तक भी था बस। मैंने कहा परसों गुरुवार है, बाबा के घर जाओ, भोग लगवाओ और बाबा को वो करके दे, थैंक्स दे के आओ। फिर उन्होंने सारे परिवार को भी कोर्स कराया, अभी खुद तो जाते हैं क्लास में, अभी लॉकडाउन में नहीं गए हैं तो घर में लेके मूल्य सुनते हैं। तो बाबा कैसे असंभव भी संभव करता है, खाली उसे चाहिए सच्चा दिल, बस कुछ नहीं चाहिए उसको। अगर हमारा सच्चा दिल है ना तो सब होगा। ठीक है, ओम शांति।